नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। हिंद महासागर में अमरीकी पनडुब्बी के हमले में ईरानी युद्धपोत के डूबने के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष गहरा गया है। 78 नाविकों को बचा लिया गया, 101 नाविक अब भी लापता हैं। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के युद्धपोत पर यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहला हमला है। इससे पहले श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा था कि युद्धपोत के चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कई शव बरामद हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए समुद्र तट पर लाया गया है।
यह घटना गोल से लगभग 40 समुद्री मील दक्षिण उस समय हुई जब जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के बाद ईरान लौट रहा था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बचाव कार्यों के लिए जहाज और विमान तैनात किए। श्रीलंकाई नेवी ने कहा कि उन्होंने कई चालक दल के सदस्यों को बचा लिया है और समुद्र से कई शव बरामद किए गए हैं। कम से कम 75 नाविकों के घायल होने की सूचना है, जबकि 100 से भी अधिक लोग अभी भी लापता हैं। हिंद महासागर में खोज और बचाव अभियान जारी है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
ईरान की राजधानी तेहरान में प्रशासन से जुड़े बासिज और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर इसराइल के हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा गया है। इसराइली रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान देश भर में नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन कमान केंद्रों का इस्तेमाल करता है। IDF ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से ईरान में 1097 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। इसराइल की वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने आज चेतावनी दी कि जिसे ईरान का अगला सर्वोच्च नेता चुना जाएगा उसको भी खत्म करने पर विचार किया जाएगा। इससे पहले कल इसराइल की सेना ने विशेषज्ञों की सभा के एक भवन पर हमला किया। ये सभा धार्मिक नेताओं का समूह है जो ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन करती है। अमरीकी युद्ध विभाग के बयान में कहा गया है कि कुवैत के शोएबा बंदरगाह पर ड्रोन प्रणाली के हमले में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमरीकी सेना के 4 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं। इस बीच पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान साइप्रस पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नाकामी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले अपने साथियों से सलाह नहीं ली थी। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग को देखते हुए टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि कल से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 उड़ान अतिरिक्त चलेगी। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा से दिल्ली, कोच्चि और मुंबई के लिए विशेष उड़ानें शनिवार तक चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल राष्ट्रपति स्टब से होने वाली मुलाकात और रायसीना संवाद 2026 में उनके मुख्य भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीट के लिए नामांकन पत्र भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ की 2 सीट शामिल है। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 170 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में न्यूजीलैंड ने यह लक्ष्य 13वें ओवर में ही हासिल कर लिया। फिन एलन ने न्यूजीलैंड के लिए शतकीय पारी खेली। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।